मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। दोस्तों, आज 23 मार्च 2017 है और आज के इस afis.com के लाइव मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा, आज 23 मार्च है। 23 मार्च का दिन स्पेशली हमारे इतिहास में, और आप यूं भी कह सकते हैं कि हमारी स्मृति में, एक अलग ही दिन के रूप में दर्ज है, और वह है शहीद दिवस। आज का ही वह दिन है, तारीख कहना चाहिए, आज की वह तारीख है जब सरदार भगत सिंह को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था, और उन्हीं की स्मृति में हमारा देश आज के दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाता है। तो मित्रों, मैं आज इस शहीद दिवस के अवसर पर आप सबकी ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से हमारे देश के सभी शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी भावनाओं और उनके विचारों के प्रति सच पूछे तो श्रद्धा नत हूं, माथा टिकाता हूं। मित्रों, सच में कभी कभी सोचकर लगता है कि ये सब लोग किस तत्व के बने हुए थे, और सच पूछे तो आज का दिन कम से कम मुझे इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है, आमंत्रित कर रहा है कि मैं आज कुछ उन्हीं के व्यक्तित्व और विचारों को लेकर आपसे जिंदगी के बारे में कुछ बातें करूं। तो मित्रों, चलिए आज के विषय को अगर आप कोई नाम ही देना चाहते हैं तो आप विचारों की मजबूती, विचारों की ताकत आज के इस एपिसोड को नाम दे सकते हैं। मित्रों, मैं सच पूछे तो जितने भी शहीद हुए हैं, मैंने बहुत से हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो क्रांतिकारी रहे हैं, जिन्होंने देश पर अपने आप को उत्सर्जित कर दिया है, अपने जीवन को बलिदान कर दिया है, न्यौछावर कर दिया है, उनकी बायोग्राफीज पढ़ी हैं। निसंदेह रूप से ये मेरा अपना विचार है, मेरी अपनी कह लीजिए कि पसंद है, मैं किसी को इसमें दूसरे को कमजोर नहीं ठहरा रहा हूं। लेकिन जो शहीद भगत सिंह की जो बायोग्राफी है वो मुझे सबसे ज्यादा अपील करती है, सबसे ज्यादा अपील करने के पीछे देखिए कुछ कारण होते हैं, सबके अपने अपने कारण होते हैं। मेरे अवचेतन मन में जो कुछ भी है, अगर मैं सामने उससे मैच करती हुई कोई भी चीज देखूं, चाहे फिल्म देखूं, गाना सुनूं, दृश्य देखूं, तो बट नेचुरल है कि वो मुझे सबसे ज्यादा अपील करेगी। शहीद भगत सिंह जो मुझे इतने अपील करते हैं, उसके पीछे मेरा अपना अवचेतन मन हो सकता है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन दोस्तों, मैं शहीद भगत सिंह की दो घटनाओं के जरिए अपने सभी नौजवान साथियों से, और यहां तक कि लाइफ मैनेजमेंट के मेरे जितने भी प्रिय श्रोता हैं, उन सबसे दिमागी मजबूती के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। और ऐसा इसलिए दोस्तों कि मेरे पास मेल भी आते हैं और मैडम प्रीति अग्रवाल के पास जो सबसे ज्यादा जो फोन आ रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, उसके केंद्र में जो मुझे मालूम पड़ रही है, जो बात, जो समस्या, वो दिमागी कमजोरी की समस्या मालूम पड़ रही है। इसलिए मुझे लगा कि अगर इस शहीद दिवस पर कुछ ऐसी बातें की जाएं जो हमारे लोगों के अंदर दिमागी मजबूती का आधार बन सकें, तो मैं समझता हूं कि एक प्रकार से शहीदों के प्रति यह दी गई सबसे अच्छी पुष्पांजलि होगी। दोस्तों, मैं दो घटनाएं आपको बताना चाहूंगा, शहीद भगत सिंह से जुड़ी हुई घटनाएं। आपको मालूम है कि शहीद भगत सिंह लंबे समय तक जेल में बंद रहे, और बहुत ही सिंपल सी बात थी उनको छूट जाने के लिए, और वो ये थी कि अंग्रेज केवल ये चाहते थे कि भगत सिंह माफीनामा लिख करके दे दें, यानी कि क्षमा मांग लें, सत्ता से क्षमा मांग लें, अंग्रेजों से क्षमा मांग लें कि उनसे गलती हुई है और आइंदा वो ऐसी गलती नहीं करेंगे, बस केवल ये चाहते थे। और सच पूछे तो अंग्रेज, जो भी इतिहास में हमें उल्लेख मिलता है, मन से चाहते थे कि हमें भगत सिंह को फांसी पर लटकाना न पड़े, वो माफी मांग ले। यानी कि वो भगत सिंह के प्रति कोई बड़े दयालु बनकर के वो ऐसा चाह रहे थे, नॉट एट ऑल, क्योंकि वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि यदि भगत सिंह को हमने फांसी पर चढ़ा दिया तो ये लोगों के बीच में इतने पॉपुलर है, खासकर युवाओं के बीच में, कि युवाओं में फिर जो आक्रोश भड़केगा उसे कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं होगी। तो चाहते ही थे कि हम इनको छोड़ दें, लेकिन अब छोड़ने के लिए उनको कोई बहाना चाहिए था, सत्ता का तो अपना अहम होता है। वो अपनी तरफ से छोड़ना नहीं चाहते थे और भगत सिंह जो हैं वो माफी नहीं मांगना चाहते थे। अब सोच कर देखिए उसकी उस समय उनकी उम्र कितनी थी, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, 21 22 23 साल के आसपास की उम्र थी, है ना, क्योंकि मुझे डेट वगैरह सन वगैरह उतने ज्यादा परफेक्ट तरीके से ध्यान में नहीं रहते, लेकिन बहुत ही कच्ची उम्र के थे। उम्र कच्ची, शरीर कच्चा, लेकिन दिमाग कितना पक्का। दोस्तों उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया और जब उनकी मां गई मिलने के लिए और उनके सामने एक तरीके से मां गिड़गिड़ा रही है कि बेटे तू माफी मांग ले, पिता गिड़गिड़ा रहे हैं कि बेटे तू माफी मांग ले, वो माफी मांगने से साफ साफ इनकार कर देते हैं और वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि अगर मैं माफी मांग लूंगा तो मैं माफी मांगने के बाद कुछ नहीं कर सकूंगा और यदि मुझे फांसी पर चढ़ा दिया गया तो मेरे उद्देश्य को हासिल करने में वो ज्यादा काम आएगा। इस बात को आप सोचिए कि 21 22 साल का लड़का, कच्ची उम्र का लड़का लेकिन बहुत पक्के दिमाग का लड़का समझ रहा है और यही हुआ। आप सोचिए अपनी मां से वो कहते हैं कि मां मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, ये मेरे शब्द है, मैं भाव बता रहा हूं, बहुत प्यार करता हूं और मुझे अफसोस हो रहा है। सर भगत सिंह अपने को नास्तिक कहते थे, है ना, कि जो ईश्वर को नहीं मानता है, और मुझे आज अफसोस हो रहा है इस बात का कि मैं नास्तिक हूं। यदि मैं आस्तिक होता तो आज मैं इस भरोसे पर अपना जीवन कुर्बान कर सकता था या मरण को अपने सीने से लगा सकता था कि अगले जन्म में भी मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। आपको मालूम है कि जो ईश्वर पर भरोसा करते हैं या जो भारतीय दर्शन है वो पुनर्जन्म की बात करता है, तो मैं पुनर्जन्म अगले जन्म में भी मैं तुम्हारा ही बेटा बनूंगा, मैं कम से कम इस विश्वास को तो पाल कर इस दुनिया से जाता। सोच करके देखिए वो अपने मां के प्रति अपने अगाध प्रेम, अगाध श्रद्धा, अगाध जुड़ाव को भी बता रहे हैं लेकिन अपने विचारों के बारे में भी बिल्कुल खुलासा कर रहे हैं कि मैं नास्तिक हूं, मैं क्या करूं, काश कि मैं आस्तिक होता। दोस्तों एक दूसरी छोटी सी घटना मैं आपको सुनाता हूं जो कितनी जबरदस्त है। कहा जाता है फ्रेंड्स कि जब फांसी पर चढ़ाने का वक्त हो गया और जेलर को कहा गया कि अब भगत सिंह को लेकर के आइए, तो जेलर ने गया और वहां उन्होंने देखा कि भगत सिंह किताब पढ़ रहे हैं, मार्क्सवाद पर कोई किताब पढ़ रहे थे, मार्क्सिज्म पर कोई बुक पढ़ रहे थे। जेलर ने कहा कि चलो भगत सिंह टाइम हो गया है, तो बड़े इत्मीनान से वो उठे और जो किताब पढ़ रहे थे उसको बंद करने से पहले एक बुक मार्क होता है ना, जैसे एक पतली सी पट्टी कह लीजिए, कागज की पट्टी होती है जो आप किताब के बीच में जहां आप पढ़ रहे थे उसी पेज पर लगा लेते हैं ताकि जब दोबारा आएंगे तो फिर आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं हो, आप वहीं उंगली डालेंगे और फिर से वो पेज खुल जाएगा और आप तुरंत पढ़ना शुरू कर देंगे। कहा जाता है कि उन्होंने बकायदे उस किताब में बुक मार्क लगाया और उठ करके बड़े शांत भाव से जेलर के साथ चल लिए और जेलर देख करके हक्का बक्का रह गया कि यार ये भगत सिंह है, मतलब वो इस तरह से व्यवहार कर रहा है जैसे कि वो अभी कहीं तफरी करने जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं और अभी वापस आएंगे और फिर से किताब शुरू कर देंगे। दोस्तों सोच करके देखिए ये बात शब्दों में तो बड़ी छोटी सी लगती है, कहानी किस्से जैसी लगती है, लेकिन प्लीज थोड़ा सा इसे महसूस कीजिए, महसूस कीजिए कि वो आदमी अंदर से कितना संतुलित है, कितना मजबूत है। यूं सच पूछे तो यूं कह लीजिए कि जो जितना मजबूत है वो उतना ही संतुलित है। जो धरती जितनी मजबूत चट्टानों से बनी हुई होगी वहां भूकंप के झटके उतने कम लगेंगे क्योंकि वो झटकों को बर्दाश्त कर लेगी, तो उनका जो मस्तिष्क था, जो दिमाग था, जो विचार थे वो इतने मजबूत थे कि फांसी की सजा की बात छोड़िए कि फांसी की घड़ी तक उनको जरा सी भी विचलित नहीं कर पाती है, न उनकी चाल में कंपन है, न चेहरे पर उदासी है और न विचारों में किसी किस्म की मायूसी है कि मैं अभी फिर आऊंगा और फिर पढ़ूंगा। आप सोच करके देखिए कि जब वो पढ़ रहे थे तो उसी पल में डूबे हुए थे और अब फांसी के फंदे पर जब चढ़ना है तो उस पल में डूबेंगे। दोस्तों ये दिमाग की मजबूती होती है। सोच करके देखिए कि हम सब क्या करते हैं, अपनी छोटी छोटी परेशानियों से इतने ज्यादा हिल जाते हैं कि लगता है कि अब ये दुनिया ही हमारे काम की नहीं रह गई है, छोड़ो इस दुनिया को, छोटी छोटी परेशानियां हैं, बहुत ही टेम्परेरी किस्म की परेशानियां हैं और ऐसी परेशानियां हैं जिससे हमारे अस्तित्व को कोई चुनौती नहीं है, हमारे जीवन को कोई खतरा नहीं है, लेकिन हम उन छोटी छोटी परेशानियों से इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि बिना भूकंप के भी ऐसा लगता है जैसे 7 डिग्री का भूकंप आ गया हो। सब कुछ अंदर से हिल गया हो, क्योंकि इस तरह के मेल मेरे पास आते हैं। मैडम से भी सवाल पूछे जाते हैं, समस्याओं पर बात की जाती है कि पढ़ने में मन नहीं लगता, उसने ये कह दिया है तो मुझे ये लगने लगा है, वह मुझको उसने डांट दिया है, वह मुझको छोड़कर चली गई है, वह मुझको छोड़कर चला गया है, उसके बिना मेरा मन नहीं लग रहा है। अरे, हम सब के पूर्वजों में शहीद भगत सिंह, आजाद, चंद्रशेखर आजाद, गुरु जैसे लोगों का नाम है जिन्होंने इतनी ज्यादा मजबूती दिखाई है कि अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और किसके लिए न्यौछावर किया था? अपने किसी परिवार के लिए नहीं, अपने खानदान के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए, जिसमें हम सब शामिल हैं। दोस्तों, एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि वक्त ज्यादा बातें करने की इजाजत नहीं दे रहा है, और वो ये जो सरदार भगत सिंह जैसे लोगों में या किसी में भी जिन्हें आप आज देखते हैं, उनमें जो आपको मजबूती दिखाई देती है ना, जिसको मेंटल स्ट्रेंथ कहता हूं मैं अक्सर, और मैं अपने क्लास स्टूडेंट से लगातार इस बात पर जोर देता रहता हूं कि इन 15 दिनों में देखिए कि आप अपने दिमाग को कितना मजबूत बना पाएंगे। और हमारी पूरी की पूरी योजना इसी आधार पर होती, चाहे वो क्लास में स्टूडेंट के बैठने की योजना क्यों ना हो। उस समय हमारे स्टूडेंट को थोड़ा सा वो बुरा लग सकता है, क्योंकि वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है ना, लेकिन मैं जानता हूं कि मजबूती कहां से आती है। तो मित्रों, मजबूती दो चीजों से आती है। एक आती है सिद्धांत से, प्रिंसिपल्स से, कि जीवन के लिए आपने कुछ सिद्धांत बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। हमारे शरीर खड़ा है रीढ़ की हड्डी पर, स्पाइन है ये हमारा। तो हमारे विचारों की कोई स्पाइन है कि नहीं है? रीढ़ की हड्डी हमारे पास है या नहीं? विचारों की हड्डी है या नहीं? पहली बात। और दूसरी बात, केवल रीढ़ की विचारों से ही बात नहीं बनेगी, उन विचारों को मैंने जिया कितना है, उनको अपने जीवन में कितना प्रयोग में मैं ला पाता हूं, यानी कि प्रैक्टिकली मैं क्या कर रहा हूं। अगर मैं प्रैक्टिकली बहुत प्रोटेक्ट लाइफ जीना चाहूंगा, बहुत ही सुरक्षित जीवन जीना चाहूंगा, तो स्वाभाविक है कि जब थोड़ी सी भी असुरक्षा की स्थिति आएगी तो मेरी जान निकलने लगेगी, क्योंकि मैंने तो वो जीवन जिया ही नहीं है, मैंने प्रैक्टिकल तो किया ही नहीं है। यानी कि विचारों का मतलब ये नहीं कि मैं किताबें तो खूब सारी पढ़ पढ़ करके और उसमें कोटेशन रट लूं और इसके बाद उनका उपयोग ही नहीं करूं, और मैं कहूं कि नहीं, मेरे पास तो सिद्धांत है, मेरे पास तो विचारों की रीढ़ की हड्डी है, इसके बाद भी मैं कमजोर हूं, वो गड़बड़ हो जाएगा। मित्रों, तो दो चीजों से मजबूती आती है। पहली बात है प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, आपके जीवन के क्या सिद्धांत हैं, और दूसरी है कि फिर उन सिद्धांतों को जीने की कोशिश कीजिए, देखिए कि कैसे विचारों में मजबूती नहीं आती है, वह आएगी ही। सच पूछिए तो विचार तो हमारी प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कोई हमें अपने आलिंगन में ले, कोई हमें अपने सीने से लगाए, ताकि हम उसके सीने में एक फौलाद बनकर उसे मजबूत बना दें। तो मित्रों, यही हमारे शहीदों की मजबूती का सबसे बड़ा कारण था। और अंत में एक बार फिर से मैं उन सभी का स्मरण करते हुए आप सब की ओर से और अपनी ओर से उनकी पावन स्मृति को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो मित्रों, इसी के साथ ही आज का ये लाइफ मैनेजमेंट हमारा यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।